जैसे जैसे हमको जो कुछ प्राप्त हो रहा है उस ज्ञान नेत्र के लिए भक्ति उसका अंजन है, और वह भक्ति से जिसके सेवन से परमात्मा के साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। जिस भगवान को हम चाहते हैं अपने बनाने के लिए, भगवान भी चाहते हैं कि ये जीव भी मेरा बन जाए। तो भक्ति का साधन प्रभु का और प्रभु के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार कराते हैं। भगवान के ध्यान का अभ्यास भी धीरे धीरे चित्त को निर्मल बना देता है। कहते हैं तब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सूर्य चंद्रमा एवं चंद्रमा ने अंदर अग्नि नो विन्यास कर रो एने पर याद, उसको भी याद कर लेना है। सूर्य का अर्थ सूर्य चंद्र और अग्नि तीनों का ध्यान में भजन में बैठने से पहले स्मरण कर लेना है। अब इसका इसकी क्या जरूरत है? सूर्य प्रकाश मन चंद्र है, और जो अग्नि है अग्नि ओ वाक है, अग्नि का देव है, अपने वाचा वाणी का देव है अग्नि। सूर्य चंद्र और अग्नि, ज्ञान मन और वाणी तीनों को यहां पर कहते हैं कि उसको एक करना है, उसका विन्यास करना है, एक का दूसरे में, दूसरा दूसरे का तीसरे में। ज्ञान को मन में और मन को वाणी में एक दूसरे में उसका विन्यास करना है। और इसलिए हमारे जीवन में हमारे शरीर में ज्ञान भी है मन भी है और वाणी भी है, तो उसको बलिष्ठ बनाने के लिए भी, उसको योग्य बनाने के लिए, जहाँ से उनको शक्ति प्राप्त होती है उन देवों को भी याद करना पड़ता है। तो सूर्य चंद्र और अग्नि, ज्ञान मन और वाणी के अधिष्ठाता है, उनके प्रतीक प्रतीक है। जो ये तीनों को एक कर देता है, और एक करना चाहिए भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा, तो वहां पर ध्यान से समय संकल्प दृष्टि और भगवान का नाम ये तीनों को एक कर देना चाहिए। यहाँ पर एक करने के बाद बस अपनी वृत्ति और कहीं पर न लगे, मन कहीं और न भटक जाए, हमारी वाणी कहीं और दूसरे बातों में न फंस जाए। इस दृष्टि से अग्नि चंद्रमा और सूर्य को हमें याद करना है। हमारा ज्ञान बल है, वो ऐसी जगह पर हमारा ज्ञान का दुरुपयोग ना हो। देखना अच्छे बुद्धिमान होते हैं तो कई लोगों की बुद्धि का दुरुपयोग कर स्वयं कर लेते हैं, उसको कुबुद्धि आ जाती है, और अपनी जो होशियारी है अपनी जो बुद्धि है उसका इतना भयंकर दुरुपयोग करते हैं। उसके पास चातुर्य होगा, बड़ा होशियार भी होगा, लेकिन उसका उपयोग हल्के कार्यों के। यदि ऐसी व्यक्ति अपने मन बुद्धि और वाणी को अच्छे मार्ग पर लगा दे तो उसका उद्धार मुक्ति हो जाए। लेकिन वह बुद्धिमान मनुष्य दुरुपयोग करके अपनी दुर्गति का मार्ग ढूंढ लेता, पकड़ लेता है। तो भगवान कहते हैं तीनों को एक बनाकर एक कर देना चाहिए, मन, ज्ञान और वाणी को। बस उसके द्वारा भगवान को ही देखो, भगवान से ही प्रेम करो और भगवान का ही नाम स्मरण करते चलो। बस एकाग्रता आ जाएगी, ध्यान भी लग जाएगा। जब किसी ध्यान में एकाग्रता आती है, तीव्रता आती है, गहराई में जब चले जाते हैं हम, तब दृश्य, ज्ञान और क्रिया, ये सब का भेद अपने आप ही मिट जाता है। न दृश्य रहता है, न ज्ञान रहता है, न ज्ञाता भी रहता है। वो सब के सब भेद अपने आप अंदर ही शांत हो जाते हैं। अब भेद दृष्टि जीवन में से हट जाए, यह तो हमारा लक्ष्य है। किसी के प्रति कभी भी हमारी भेद दृष्टि होनी नहीं चाहिए। जहां पर भेद की वृत्ति आएगी, वह राग द्वेष आरंभ हो जाएगा। वहां पर अपने जीवन के अनेक उत्पात बनने शुरू हो जाएंगे। भेद दृष्टि ही मनुष्य को भटका देती है, जीवन भी भ्रमित हो जाता है। जहां पर भेद आया, भेद दृष्टि गई, इसके साथ ही प्रभु दृष्टि आ जाएगी, भगवत दृष्टि आ जाएगी। और भगवत दृष्टि में न कोई निम्न है, सब के सब भगवान के ही है, भगवान में ही है। भेद दृष्टि चली गई, न कोई अच्छा है न कोई बुरा है, अपने जीवन में ही उसने इस प्रकार जब एक समझदारी प्राप्त कर ली, मैं किसके साथ द्रोह करूं, मैं किसके साथ लड़ाई झगड़ा करूं, मैं किसको गाली दूं, सिया राम मैं सब जगह जानी, सब में प्रभु है मेरे, विगत काम मद क्रोह निज प्रभु मैं देखाई जगत। जब सब में भगवान दिखाई देते हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु, भगवान गीता में भी यही बात करते हैं, सब में मैं ही हूं, प्राणी नाम देहमाश्रिता, प्राणी मात्र के शरीर में मैं बैठा हुआ हूं। जब ये दृष्टि हमारे जीवन में का ये लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाए, बस व्यवहार अपने आप छूट जाएगा। संसार की आप आसक्ति है वो अपने आप नष्ट हो जाएगी, देहाध्यास भी अपने आप गल जाएगा, जैसे बर्फ गल जाता है, जैसे अंगारा जलते जलते बुझ जाता है और आखिर में खाक हो जाता है, उसका स्वरूप ही बदल जाता है। परंतु इस प्रकार हम स्वयं भेद दृष्टि को छोड़ दें, जब भी भेद दृष्टि छूट जाएगी उसी क्षण आप शांति को प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन है, भौतिकता भी है, व्यवहार भी है। भौतिकता में भेद दृष्टि का त्याग का अर्थ यह है, जब भी हम उपासना में आगे बढ़ने जा रहे हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य, हमें शांति चाहिए, हमें हमारे हमें आत्मदर्शन करना है, उस समय व्यवहार से हट करके एकांत में बैठ करके अपने आप को उस भेद से अलग कर लेना। व्यवहार के बीच में रहते हुए भी, परिवार के बीच में सबके साथ जीते भी, पद्म पत्र विवाम बसा, जल में कमल, कमल का पत्ता और कमल का फूल, उसको पानी का स्पर्श होने ही नहीं देता है, होता है तो उसको पकड़ता भी नहीं, उस गिर जाता है पानी। वो भीगता नहीं है, पानी में अपने में पकड़ता नहीं, अपने आप ही पानी फिसल जाएगा। और जब भी कुछ हवा आई तो उस पर से वो निकल जाएगा, उतर जाएगा। बस जीवन भी और जीवन की हमारी ऐसी बनी रहनी चाहिए, निस्पृहता, अकिंचनता, किसी भी भौतिक आसक्ति और अध्यास को जब भी हम एकांत में अपने आप में बैठ अपने साथ बैठते हैं उस समय उसका त्याग व्यवहार करते रहो, लेकिन अकिंचन बन के निष्प्रह होते रहो। भगवान ने गीता के अंदर कर्मयोग बताया है, लेकिन ओ कर्मयोग बताया किस ढंग का? निष्काम कर्मयोग, करते चलो, फल की इच्छा नहीं, अध्यास नहीं, आसक्ति नहीं। जहां पर देहाध्यास आ गया कि वहां पर फंस गए। यहां भेद दृष्टि अपने आप ही हटती चली जाए। जैसे जैसे हम हमारे चिंतन में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे स्वस्वरूप का जितना जैसे जैसे अनुसंधान होता जाएगा, उसमें हम स्थिर होते जाएंगे, वैसे वैसे अपने आप ही जैसे सर्प अपनी कैंची उतार देता है और उतर जाती है पूरी की पूरी, पूरे शरीर ऊपर का जैसा आकार, जितना आकार सर्प के शरीर का है उतना पूरा पूरा ऊपर से उतर जाता है एक बार। फिर सर्प बाहर निकल कर के उसकी चमड़ी नहीं आ जाती, उसको छोड़ के चला निकल जाता है। बस हमारे जीवन व्यवहार में सर्प की तरह उसकी कैंची उतार करके आगे बढ़ जाओ, हमें कुछ नहीं होने वाला। भेद दृष्टि अपने आप ही उतर जाएगी, कोई भी नुकसान नहीं होगा हमारे शरीर हमारे जीवन में। व्यवहार के अंदर जब है, व्यवहार कर रहे हैं, तब तक व्यवहार की कक्षा तक, उसके स्तर तक तो बराबर है, ठीक है, व्यवहार करते रहो। जीवन सभी भौतिकता के ऊपर तो टिका हुआ है, और जीवन भी भौतिक है, उसके आश्रय भी भौतिक है। भौतिकता को भौतिक की आवश्यकता पड़ेगी ही, जो जिसका स्वरूप होगा उसमें जाकर के मिलेगा। मिट्टी मिट्टी में मिलेगी, पानी पानी में मिलेगा, तब उसका स्वरूप हो जाएगा। जो जिसका स्वरूप है उसमें ही जाकर के मिलेगा, तब वो एक हो जाएगा। वैसे ही हम हमारे व्यवहार को, हमारी भौतिकता का जो संबंध है, वो सभी संबंध को ऊपर से बनाए रखो, क्योंकि भगवान तो कहते हैं गुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, जो पहले से करते आए हो करते रहो। परंतु जब एकांत में बैठ जाते हैं, जब भजन में बैठ जाते हैं, तब अपने आप को संभालो, और उस समय भौतिकता को भौतिकता में मिलने दो, और जो हमारा मन, हमारी जो वृत्तियां आत्मा के अंदर चली जाएगी, तो हमारे स्वस्वरूप को, हमारी उस सूक्ष्मता को जिसका अंश है इसमें मिल जाने दो। अपने आप को शरीर से अलग मानो, शरीर मैं नहीं हूं, मैं जो हूं इस शरीर में रहने वाला हूं, और उसको जा करके जैसे शरीर पंचभूत में मिल जाता है, वो समाप्त हो गया, अपना स्वरूप वहां पर विलीन हो गया शरीर का पांच भौतिक, वैसे जीते जी जीवन मुक्ति का आनंद शरीर होते हुए भी अपने आप उस परम के साथ उसका संबंध जुड़ा था। मैं शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं उस ब्रह्म का ही स्वरूप हूं। हम उसके अंदर मिल जाएंगे ना, तो उसके स्वरूप ही बन जाएंगे। जैसे जल का एक बूंद जा करके जल में मिल गया, वो जल पूरा उसके उसके अणु अणु पूरे जल में फैल चुके हैं, वो अलग नहीं निकाल सकते उसको। मिट्टी का एक ढेला, उसको तोड़ फोड़ करके बिखेर दिया, मिल गया उसको जाने। वैसे हमारा पांच भौतिक स्वरूप भी, जब भी उसके संस्कार हो जाएंगे तब जा करके वो सब अपने अपने में मिल जाएगा, उसको अलग ढूंढने जाओ। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृ हैं, हमारे तो थे लेकिन उसकी एक भी चीज़ अलग ले आओ, शरीर की भी ले आओ, नहीं मिलेगा उनके शरीर में जो मिट्टी थी वो मिलेगी, हाथ में आएगी, कोई भी चीज़ नहीं मिल सकती। क्यों? कि सब जा करके अपने अपने में विलीन हो गए, फिर उसकी अलग पहचान कहाँ से रहेगी। वैसे हमारे स्वस्वरूप को, हमारे आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म होते हुए भी उसको जा करके परम आत्मा में मिला दो, आत्मा को परम आत्मा में मिला दो जो सर्व जगत में व्याप्त है, अक्षुण्ण है और अमर है, अमृत है, बस उसमें जा करके मिल गया। लेकिन कब? व्यवहार की भेद दृष्टि हमारी हटेगी तब जा करके इस अवस्था को हम पहुंच सकते हैं। जीवन के जितने भी क्लेश हैं, जितनी भी मन की अशांति है, जितने दुख हैं, वो सब के सब हमारे जीवन में से यदि मिटाना चाहते हो तो इसका एक ही मार्ग है। उसके अलावा आप कहीं पर जाओगे, कहीं से भी, किसी भी सत्ता, कोई भी शक्ति, कोई संपत्ति आपको शांति नहीं दे सकती। यही हमारा परम स्वरूप है, यही हमारा परम स्थान है जहां पर हमको जाना है। परम आपनोति पुरुषः, तब जाकर के हम वहां पर मिल पाएंगे। तो भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं कि उद्धव, ये सब धर्म की और क्रियाएं जो है उसको जैसे जैसे आप करते जाओगे तब इतने वैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे। ध्यान की तीव्रता, नाम स्मरण का, ध्यान का, ये सब साधन धीरे धीरे लगते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और जितने उसमें एकाग्रता आएगी उतने ही दृश्य ज्ञान एवं क्रिया वो भेद अपने आप शांत हो जाएंगे। हम करते हुए हमको भी पता नहीं कर लगेगा कि मैं कर रहा हूँ, मैं स्वयं हूँ, फिर करने वाला कौन है। कि दृश्य ज्ञान और क्रिया सब एक हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। फिर आगे जा करके तीनों वहाँ पर मिल जाएगा कि जहाँ पर आपको कुछ भी दृश्यमान होगा ही नहीं। उस समय भेद गया, अपने आप ही शांति आ जाती है। वस्तुतः एक तत्व में ज्ञान क्रिया एवं द्रव्य का भेद मात्र भ्रम ही है, भ्रम है। ये बड़ी ऊंची बात है और समझने योग्य है। दृश्य ज्ञान एवं क्रिया सब एक दूसरे में मिल जाते हैं, तत्व ज्ञान क्रिया और द्रव्य का भेद जो हमें लग रहा है मात्र भेद है। उसमें जब भी मिल जाएंगे तब कुछ नहीं बचेगा, कुछ मिलेगा ही। उसको कैसे वो कल देखे मेरी ओम बस ओ जब किसी में भी अपना मन लग जाता है, उसमें एकाग्रता आ जाती है, मग्न हो जाते हैं, उसी का नाम है ध्यान। यथार्थ रूप में जब ध्यान लग जाता है, जब किसी भी ध्यान में तीव्रता आती है, तब दृश्य ज्ञान एवं क्रिया, उसका भेद, उसका भ्रम अपने आप ही शांत हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं। जब भी तीव्रता आएगी एकाग्रता में, ध्यान लग जाएगा हमारे स्वस्वरूप के अंदर, तब जा करके हम हमारे अपने आप को भी भूल जाते हैं, अपनी अवस्था अपनी स्थिति पर भी हमें कुछ पता ही नहीं चलता। मैं ये शरीर हूं, मैं कौन हूं, उसका भी जब वो तीव्रता आ जाए, शरीर और मन वो भी अपने वश में आ जाएगा, शांत हो जाएगा। उस तीव्रता मग्नता हमको वहां पर ले जाएगी जहां पर हम स्वयं है, हमारा आत्मस्वरूप जहां पर है वहां पर चले जाएंगे हम। अब ये तीव्रता में न मन रहता है, न शरीर रहता है, न इंद्रियां भी रहती है। जैसे सो जाते हैं, नींद में सो गए, सो जाते हैं तब अपने सब कुछ भूल जाते हैं, न शरीर का पता चलता है, न अवस्था का भी पता चलता है, बस सोने का आनंद ले रहे हैं। उसके पास, अपने शरीर के पास कोई भी चीज आए नींद के अंदर, हमें भय नहीं लगेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि मेरे पास ये सांप है कि बिच्छू है, कि कोई नुकसान करने वाली कोई चीज आके पड़ी है, कुछ भी नहीं। आप निर्भय हो गए कब? जब आपका मन शांत हो गया, मन सो गया, हम निर्भय हो गए, तब देखा जाए कि भय किसको है। भय है मन को। और क्यों है मन को भय? क्यों है? कि शरीर को बचाने के लिए। मन का भय भी कुछ प्राप्त के लिए, कुछ स्वार्थ के लिए है। मन सो गया, शांत हो गया, गाढ़ निंद्रा में चला गया, पास में कुछ भी पड़ी हुई चीज है पता नहीं चलेगा, यदि जग गए उसी हमारी हमारे बिस्तर में सांप पड़ा हुआ है, सोए है कोई पता नहीं, वो भी साथ में सोया है, हम भी सोए हैं, चैन से सोए, लेकिन जाग गए, पता चले क्या है, हो ऐसे चिल्लाए हुए, उसी बिस्तर से उठ के भाग जाएंगे, सांप सांप सांप। अब जागा कौन? मन। मन के जागने के बाद ही भय आता है। मन के जग जाने के बाद राग द्वेष भी आता है, और उसमें भी स्वार्थ है अपने शरीर का। मन को भी पता है कि शरीर बचेगा तो मैं बचूंगा, और मुझे इस शरीर में रहना है, क्योंकि इस शरीर से मैं बहुत कुछ भोग रहा हूं, खा पी रहा हूं, मौज ले रहा हूं, तो शरीर को मैंने की रक्षा मैं ही नहीं करूं तो कौन करेगा। मन जहां लग जाता है वहां पर तीव्रता आ जाती है। यदि मन परमात्मा में लग जाए तो वहां पर भी आपको तीव्रता आ जाएगी, ऐसी मग्नता आएगी, बस प्रभु के स्वरूप के अनुरूप शांति ही शांति, सुख ही सुख। उपद्रव से हम बाहर निकल गए हैं, क्योंकि हमको प्रभु की सन्मुखता प्राप्त हुई, हम एकाग्र हुए। लेकिन जो प्रभु के साथ लीन होने वाला मन, कई भोगों में लीन हो गया तो भोग में भी इतनी ही तन्मयता आ जाएगी, और जब वही मन भगवान में लगा, भोग में लगा और भय में लग जाए तो भय में भी इतनी ही तन्मयता आएगी जितनी भगवान में, जितनी भोगों में। वो भय भी उसके लिए, उसको उत्प्रोत हो जाने होते ही वो स्वयं अपने आप को उसके अनुरूप ऐसी क्रिया करने लग जाएगा तो भय से छूटने के लिए। मन देख रहा है, मन भोग रहा है, और भाग भी वही रहा है, या भय से भाग भी रहा है, भोग से चिपक भी रहा है, भगवान से अनुराग भी कर रहा है। मन, मन ही हमारे जीवन में सब का कारण है। दुख का कारण भी मन है, सुख का कारण भी मन ही। जहां लगेगी वृत्ति मन की, वैसा ही सुख और वैसे ही परिस्थिति का सर्जन करने वाला भी है मन। तो भगवान कह रहे उद्धव को, उद्धव सबसे पहले मन को भगा दो, मन को अपने में वश, अपने वश करो। हम अपनेपन को मन में, मन के साथ कभी वश में होना, मन से वश मत हो, मन को अपने वश में करो। यदि सुखी होना है, यदि जीवन में शांति प्राप्त करनी है, उपद्रवी कौन है सबसे ज्यादा, खोजो अपने आप में। सबसे बढ़िया उपद्रव करना, करने कराने वाला एक मात्र मन। जानी को अनजानी करने कर देने वाला मन, और अनजानी को जानी करने देने वाला भी मन है। पूरा जगत जो खड़ा कर देता है वो मन खड़ा कर देता है, पूरे संबंध बांधने वाला भी मन है, और सबके साथ दुखी होने वाला भी वही है। जहां जिसकी जितनी तन्मयता आएगी, एकाग्रता आएगी, वहां पर वैसा ही हमारे जीवन का समय हमें प्राप्त होगा। अच्छा समय प्राप्त करना है, प्रभु के पास चले जाओ, ध्यान करो, भजन करो, उस पे तीव्रता आएगी ना, तो मनोव्यापार सब हट जाएंगे, मनोव्यापार सब अपने आप ही बंद हो जाएंगे, टूट जाएंगे, भाग जाएंगे, कि मन के व्यापार के साथ हम नहीं चलना है, हम चलेंगे प्रभु के साथ, और उसके द्वारा हमारे आत्मा तक पहुंचना है। तीव्रता, और वो भी अपने आप, तब उसी समय दृश्य ज्ञान और क्रिया उसका भेद अपने आप ही टल जाएगा, शांत हो जाएगा। देखो कभी भी, कभी ऐसी अवस्था आती है, या सत्संग में बैठे हैं, ध्यान भजन में बैठे हैं, प्रभु के दर्शन करते मूर्ति के पास खड़े हुए हैं, और ऐसी तन्मयता, ऐसी एकाग्रता आ जाएगी कि आप अपने आप को भूल जाओगे, पता नहीं चलेगा मैं कौन हूँ, कहाँ पर खड़ा हूँ। बस यही है, दृश्य ज्ञान और क्रिया उसका भ्रम, उसका भेद मिट गया, प्रभु के अंदर मन के द्वारा लीन हो गए, ऐसी तन्मयता आ गई कि अपना जो भेद है वो बचा ही नहीं, मात्र एक स्वरूप। मीरा कैसे द्वारका के श्री विग्रह में मिल गई, चैतन्य महाप्रभु कैसे जगन्नाथ जी के स्वरूप में अंदर मिल गए, ये तन्मयता है। मन, क्रिया और ज्ञान, तीनों का जब आपस में ओतप्रोतता आ जाती है, तन्मयता की तीव्रता आ जाती है, तब कुछ नहीं बच पाता है, हम स्वयं भी नहीं बचेंगे। ताली दे करके प्रभु भजन, नाम संकीर्तन कर रहे, डोल रहे, नाच रहे, सबके सामने आने वाली शर्म भी हम भूल गए, और नाचते नाचते ऐसे नाचे कि अपने आप को भी भूल गए। चैतन्य महाप्रभु जी जाते थे, बेहोश होकर के गिर जाते, कुछ पता ही नहीं चलता, और तन्मयता ऐसी थी उनको जगाने के लिए, भागवत जी का श्लोक उससे उनके कर्ण में घोषित किया जाता, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार। जब ये श्लोक उनके कान में बार बार बोलते थे, तब प्रभु जग करके बाहर आते, बस यही मेरे प्रभु, यही मेरे प्रभु। जो अंदर थे उनका शब्द बाहर से सुनने के, उनको अरे बाहर भी है, तब भी वो बाहर, तब वो बाहर आते थे, तन्मय हो जाते थे, हमारे अंतःकरण में जो बैठे भगवान उनके साथ। जब बाहर से उनको भगवान के स्वरूप के विग्रह का जब वर्णन वाला श्लोक सुनाया जाता था, विभ्रद्वास कनक सम भयजयंती चमाला, जो ऐसा वरन प्रभु का सुनते ही अंतर्मुखता से बहिर्मुख होते थे। तात्पर्य यही कि अपनी तन्मयता अपने इष्ट के साथ, प्रभु के साथ, जब जिस वस्तु के अंदर आपकी तन्मयता आती है तब आप उसके मय उसके अनुरूप हो जाते हैं। कपड़े अच्छे पहने हैं, गहने बहुत सुंदर पहने हैं, कीमती है, सब कुछ सजा करके पहन करके खड़े हो गए, शीशे के पास, आईने के पास खड़े हो गए, देखने लगे अपने आप, अपने ही स्वरूप में लीन होते जाएंगे। मैं कैसा हूं, कैसा दिख रहा हूं, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, ऐसे अपना ही वर्णन अपने मन में वो करने लगेगा, अपने अपने प्रतिबिंब को देख करके, कितना सुहाना लगता है, कितना बढ़िया लग रहा है, कितना सुंदर है। अब अपने आप को क्या है, ये तन्मयता है, मगर ये तन्मयता भौतिक आ गई, बाह्य आचार। जब तन्मयता में एक हो जाता है, एकाग्र होता है, तब उसको पता नहीं है मैं जब अपने आप को आईने में देख रहा हूं तब आगे पीछे मेरे कोई देखता नहीं है, उसका भान भूल। तो ये जब अपने आप में भौतिकता है, शरीर के अंदर स्थूल दृष्टि है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि आते ही आप स्वयं जैसे श्रृंगार में तन्मय हो जाते हैं, अपने स्वरूप को देखने में स्थूल भाव से, वैसे ही सूक्ष्म भाव से देखने का यदि आरंभ किया जाए तो धीरे धीरे अपने ही आत्मा का, अपने स्वस्वरूप का श्रृंगार देखते चलो कि महाराज स्वस्वरूप का श्रृंगार कैसा होगा, स्थूल भाव का, देह भाव का तो श्रृंगार हमको मिलता है, हम देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। सुंदर जब बाह्य आचार में, जब बाह्य दृष्टि से स्थूल शरीर का श्रृंगार देखते हैं, उसका परिणाम क्या आता है मन के अंदर, क्या आएगा बताओ? सब अनुभवी है। श्रृंगार को के अंदर तन्मयता आते आने के बाद धीरे धीरे अपने में ही विकार की उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। आपको परिणाम मिला, आप जो चाहते हैं रस वासनाओं का, वो वासनाओं का रस प्राप्त होना आरंभ हो गया श्रृंगार से, स्थूल भाव है। जब सूक्ष्म भाव आता है तब उसी अंतःकरण के अंदर चले जाओ, अपने स्वस्वरूप में आत्मा के पास, वहां पर भी श्रृंगार आपको देखने मिलेगा, शांति सुख, वो भी शाश्वत सुख, निश्चिंतता, अमरत्व, जिसको अमर होना है, आत्मा अमर है। और जैसे जैसे उसके पास चले जाएगा, न वो मरने वाला है, न वो जन्मने वाला है, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये सब श्रृंगार है आत्मा के, अपने स्वस्वरूप का श्रृंगार है। जब स्वस्वरूप के समीप पहुंच गया तो जैसे स्थूल शरीर के भाव में से विकारों का रस प्राप्त होने लगा था मन को, वैसे ही जब आत्मा के अंदर विलीन हो जाएंगे तब उसी में से प्राप्त होने वाला रस वो सत्व, स्वस्वरूप का स्वाद, स्वानुभूति अपने आप अंदर से ही उठेगी, उसका स्वाद आएगा, और ऐसा स्वाद आएगा अमृत तुल्य, ये मेरा स्वरूप है, मैं जन्मने वाला नहीं हूं, मरने वाला नहीं हूं, अमर हूं। बस यही है हमारे स्वस्वरूप के की शाश्वतता, इसी में से ही हम हमारा आत्म सुख प्राप्त कर सकते हैं। जब तन्मयता आती है तो देखो अपने स्वस्वरूप की तन्मयता का भी आनंद और रस है। स्थूल शरीर के श्रृंगार में तन्मयता का भी रस है, आनंद है, परिणाम भी है। वैसे भय ले लो, भोग ले लो, सब में जहां जहां पर आपको जिस प्रकार की तन्मयता आएगी, उस प्रकार का रस, उस प्रकार का आनंद, उस प्रकार का भय और उसका परिणाम आपको मिलता ही रहेगा। भगवान उद्धव जी से यही बात करते हुए कहते हैं, भेद निकल जाता है उस समय, अपने आप को भूल जाता है तन्मयता के अंदर, तन्मयता की तीव्रता के अंदर वो भेद नहीं रहता है। चाहे कोई भी ले, कोई भी अवस्था ले लो मन की, कोई भी व्यवहार की बात को आप पकड़ लो, तन्मयता आएगी, आप भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे, व्यवहार भी भूल जाओगे, परिस्थिति को भी भूल जाओगे, इतना नहीं अपने आप को भी भूल जाओगे। कहीं किसी काम में ऐसे लग जाते हैं, न भूख लगती, न प्यास लगती, न नींद आती, न थकते भी नहीं। क्यों? ये तन्मयता है। उत्सव मेला बड़ा मनाते हैं, 5-5, 6-6 दिन हमें खाते पीते भी आगे पीछे, नींद भी नहीं पूरी ले रहे, आनंद आता ही रहता है, मगर उत्सव पूरा होना हो जाने दो, फिर बाद में थकान कितनी लगती है। 1 हफ्ता 4-5 दिन तक आराम करने निकल जाएंगे। क्या है, आप स्वयं उत्सव मनाते मनाते अपने शरीर भाव को छोड़ करके उत्सव भाव आपके मन में, तन में, क्रिया में, व्यवहार में लगा हुआ है, इसलिए भूख प्यास थक किसी का पता नहीं चलता। तो यही अनुभव यदि हम हमारे जीवन में अपने स्वस्वरूप की प्राप्ति के लिए जब भी हमारे स्वस्वरूप के लिए जब भी हमको उसके प्रति तीव्रता आएगी, उसके प्रति हमारी भूख जगेगी, तब ही उसकी प्राप्ति हमें हो सकती है, उसके भेद अपने आप समाप्त हो जाएंगे, आप स्वयं नहीं बचेंगे, ज्ञान भी नहीं बचेगा, दृष्टि भी नहीं बचेगी, उसका भेद भी नहीं बचेगा, आप भी नहीं बच पाओगे। जैसे ईश्वर में मिल जाने के बाद ऐसे मृत्यु से हम मिट जाते हैं, मिट नहीं जाते, अपने अपने में जाके मिल जाते हैं। मिट जाना का जाने का अर्थ है नाश, समाप्ति हो जाना, और मिल जाने का अर्थ ये है जो जो चीज जहां जहां की है वहां उसमें जाके मिल जाना, आत्मा रूपी स्वय पर तत्व और परम तत्व के अंदर मिल जाता है परमात्मा। 5 भौतिक शरीर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जिस जिसके अंश है उसमें जाकर के मिल जाएंगे। आत्मा परमात्मा का अंश है, वहां मिल गए। शरीर में मिट्टी है और मिट्टी में मिल गए। तो इस भेद को हम समाप्त हुए प्रतीत होते हैं, ऐसे मन को भी भेद मिटाना है। मैं परमात्मा का ही हूं, वो ही मेरे में है, मैं उसमें हूं, समाप्त हो गया भेद, आ गए अपने स्वरूप, तभी जाकर के निजानंद को आप प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में इसके द्वारा सिद्धियां प्राप्त होती है, जब भेद मिट जाता है, जब वो ध्यान में, भजन में एकाग्र हो जाता है, तो उसके बाद उसकी सिद्धियां नजदीक में आती है। और जो सिद्धियां आती है वे सब की सब भगवान के ध्यान से आती है, उसमें तन्मय होने से आती है। परंतु यह भी भूलना नहीं चाहिए कि जो कुछ आया हुआ है ये उत्तम योग की सिद्धियां उसके द्वारा प्राप्त हुआ है, परंतु उस मार्ग में जाने के लिए सिद्धियां विघ्न है, आपको विघ्न डालेगी। जो कोई सिद्धि प्राप्त हुई है उसमें आप रम जाओगे, नहीं आगे बढ़ पाओगे। जो कुछ चमत्कार प्राप्त हुए हैं, जो बल शक्ति प्राप्त हुई है, उसको लेकर के आप बाहर आ गए अपने स्वस्वरूप से, और दुनिया आपके आपके आगे आगे पीछे जुट गई, घेर लिया आपको और पूरा हो गया। सिद्धि संपूर्ण प्राप्त होते, आत्म तत्व की सिद्धि प्राप्त होते हुए कभी भी सिद्धि में मन नहीं लगाना, क्योंकि वो भी प्रभु प्रभु का बनाया हुआ खिलौना है। एक सिद्धि नवनिधि है, अष्ट सिद्धि है, वो सब की खिलौने के साथ चिपक गया, खेलने लगा, तो समझ लेना कि वहां अपने रास्ते में वो उलझ गए। साधक कभी भी भगवत भजन के समय न उलझे कोई सिद्धि नहीं। भगवान की माया ऐसी है, मार्ग में डाल देती है। एक खिलौना पकड़ा देगी, जैसे बच्चे को अपने माता पिता कोई खिलौना पकड़ा करके अपना काम के लिए, अपने काम के लिए निकल जा चले जाते हैं, और बच्चा खेलता रहता है और भ्रम में आ गया और देखा तो खिलौना खेलता था, जो माता पिता थे वो अपने काम में जुड़े, नहीं मिले माता पिता से, उसको दूर रहना पड़ा। ऐसे भगवान से भी हम दूर रहना पड़ता है हमको, जब खिलौने में हम उलझ जाते हैं। तो सिद्धियां सब योग में अपने स्वस्वरूप के संबंध में वो विघ्न डालती है। सब की सब सिद्धियां के स्वामी तो एक प्रभु है, स्वयं भगवान कहते हैं, स्वयं मैं ही हूं, और सिद्धियां भी स्वयं प्रभु की है। परंतु सिद्धियां कृत्रिम है, वो आती है जाती चली भी जाती है, कि किसी सिद्ध साधक की सिद्धि हाथ में से चली गई, वो अब पंगु हो गया, उसकी सिद्धि कुछ काम नहीं आती। तो जो सिद्धि आ गई थी वो चली भी गई, तो सिद्धि भी हमेश के लिए नहीं है। भगवान एक ही है स्वरूप, कि जो हमेश के लिए है, शाश्वत है। इसलिए भगवत भजन ही सर्वोत्तम है, सिद्धियां उसके अंदर विघ्न डालने वाली थी। भगवान उद्धव को यही बताते हैं कि अपने जीवन की उत्तर अवस्था में कैसी भी संपन्नता हो, कैसी भी शक्ति और सत्ता संपत्ति हो, फिर भी उस सिद्धियों में, उस प्राप्त हुई संपत्तियों के अंदर न फंसे, न उलझे, अपने ही स्वरूप के साथ जाने का प्रयत्न करें। मग्न होना है तो अब अंतिम समय नजदीक है, किनारा हमारा सामने दिख रहा है, कब वहां पहुंच जाएंगे उसका पता नहीं। इसलिए ये सब का सब प्रभु का है, मगर प्रभु उसमें नहीं है। जब भी ऐसी चीज को पकड़ेंगे तब प्रभु हट जाएंगे, वो भी जगत पिता है। हमारे घर के माता पिता भी खिलौना दे करके हट जाते हैं, और जगत पिता भगवान भी कोई खिलौना दे करके हट जाते हैं। भगवान ये सब बताते हैं